बहुत अच्छा है कार्यक्रम है, और ये भी पहली बार हो रहा होगा कि इस दिन का हम लोग परस्पर चर्चा करके, क्योंकि हम प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र का समग्र विकास कैसे हो ये हम पर ज़्यादा निर्भर करता है, और वर्तमान परिस्थितियों में उस क्षेत्र में क्या हो सकता है। जब हम लोगों के सुझाव और पारस्परिक चर्चा होती रहेगी, संवाद होता रहेगा, तो निश्चित रूप में जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास जल है, जो हमारे पास जमीन है, जो हमारे पास जवानी है, तो ये जल जमीन और जवानी इन तीनों का बेहतर कहाँ पर और क्या समन्वय हो सकता है। मैं सोचता हूँ जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं इसमें काम कर रहे होंगे, बरसात औद्योगिकी महाविद्यालय है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, आपका ये शोध संस्थान है, दो तीन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जड़ी बूटी शोध संस्थान है, औषधि पादप बोर्ड है, ये 5-7 संस्थानों को यदि देखा जाए तो इन संस्थानों से निकलने वाले शोध कम समय में, कम स्थान पर, कम शक्ति से, कम परिश्रम से अधिक उत्पादन, ये सूत्र कैसे तैयार हो सकता है। क्योंकि अभी भी जब मुझे मालूम है, जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश में, और माल्टा का समर्थन मूल्य चमूल्य जिन जिन स्थानों पर हो रहा था, तो जब हम समर्थित मूल्य हमने दिया तो मैंने आंकलन किया उसका कि वो जो माल्टा है वो उत्पादित हो रहा है, फिर वो समर्थित मूल्य हम ले रहे हैं, फिर बसों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा उसको भेज रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। मैंने कहा यदि टोटल जब पैसा निकाला तो मुझे ये महसूस हुआ कि यदि हम उस माल्टे को समर्थन मूल्य घोषित न करें, वहां से उठाए नहीं, बल्कि उन किसानों को उतना पैसा दे दें कि ये आपके लिए और अपना माल्टा भी खाइए, तो भी सरकार फायदे में थी। यदि उस माल्टे को उठाए भी नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, यदि उस माल्टा को हम उठाए भी नहीं और जितना समर्थित मूल्य हमने दिया है उसका वो पैसा हम किसान के हाथ में दे दें कि ये भी लो और अपना माल्टा भी बेचो, चाहे खाओ चाहे रखो, तो भी लाखों लाखों रुपया फायदे में थी सरकार का। मतलब हम उस चीज को जरूर करना चाहेंगे जो किसान पर, प्रदेश पर भार न बने, जिसके प्रतिस्पर्धा में जहां लोग स्वयं आए और उस किसान को किसी सरकार के सामने हाथ न पसारना पड़े, बल्कि स्वाभिमान के साथ उसको बेच करके उसको लग सके कि उसने मेहनत की है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप में ऐसा सूत्र निकाला जा सकता है जो कम समय में उत्पादित हो, कम स्थान में, क्योंकि ज्यादा जगह हमारे पास नहीं है, तो कम समय में, कम स्थान पर, कम खर्च से और कम परिश्रम से, वो क्या सूत्र हो सकता है। और ये सूत्र आप निकालिए, मेरा भरोसा है ये सूत्र निकल सकता है हमारे। उदाहरण के लिए संकर किस्म के बीज है, जो संकर किस्म के बीज हमारे क्षेत्र में हो सकते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। हमारे एक छोटा सा ट्रक भी करोड़ों करोड़ों रुपए का हो सकता है, छोटी सी गाड़ी करोड़ों की हो सकती है। इसलिए उस चीज को शोध करके किस स्थान पर, ऊपरी हिमालय, मध्य और तराई, इन तराई में क्या हो सकता है जिसकी गुणवत्ता की दृष्टि से वो पूरी दुनिया के मार्केट में अपने को खड़ा कर सके, मध्य हिमालय के क्षेत्र में वो क्या उत्पाद हो सकते हैं जो उत्पादन करते ही पूरी दुनिया के लोग भीड़ लग जाए और एडवांस में पैसा दे करके जाए। और ऊपरी हिमालय तो ऐसा है कि हिम रेखा पर जितने भी चीजें उत्पादित हो रही वो संजीवनी है, इसलिए जब आप फूलों की घाटी पर जाते हैं तो वहां लोग जो है बेहोशी किसी स्थिति में आती है। आप किसी पत्ते को तोड़ते हैं वो आधा किलोमीटर दूर तक सुगंध देता है। अब ये अभी हम लोग उस सीमा तक शोध कर पा रहे हैं कि नहीं, कि किस किस चीज में हो सकता है कि ये शोध करके जो चीज वैसी बिखरी पड़ी है हमारे लिए, जो हमको कुछ महसूस नहीं होती, वो न जाने संजीवनी बन करके उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के, उस परिवार के लिए बहुत आगे बढ़ सके। इसलिए मेरा अनुरोध है जो अपने शोध करता है कि उस पर शोध हो, आर्थिक दृष्टि से जरूर हो। पहला काम है कि उसकी मार्केट में कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। अब जैसे गलगल आ गया, मांडा को गलगल ने पूरी तरह पीट दिया, अब वो पंजाब में इस सीमा तक का बाहर से उत्पादित होकर क्या गया जो यहाँ जो है वो वैसे चल रहा है। तो वो क्या चीज हो सकती है जो चाहे वो मार्केट में किसी सीमा तक का हो जाए लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा उस स्थान पर न हो। तो इसलिए वो जो जड़ी बूटियां हैं वो हो सकती है, वैकल्पिक दिशा में क्या 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 चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि पुष्पों का, जैसे माननीय त्रिवेंद्र जी ने कहा, ये पुष्पों का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। उस समय भी हमने नैनीताल के जो गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से नैनीताल के जो पुष्प उत्पादन कुछ नौजवानों को छोड़ा था, जिनको सब्सिडी भी दी थी, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं और बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। यदि उसी वही नवयुग उतनी धनराशि से यदि कोई और उत्पादन करते तो शायद उस स्थान पर खड़े नहीं हो पाते। आज मार्केट है, फूलों की मार्केट है, और उसके माध्यम से जो जो जैसे आपका गुलाब का जल है, जो गुलाब हमारे शिखर में पाया जाता है, वो गुलाब यदि मैदानी क्षेत्र में गुलाब चाहे कितने ही खिल क्यों नहीं रहा है, लेकिन जो उसके अंदर गुणवत्ता है उसमें लाखों गुना उसमें अंतर है। उसको शोध करके इसकी एक बूंद भी उसके हजार बूंदों के बराबर है, तो वो क्या क्या हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ ये बहुत अच्छा अवसर है, ये संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे अखिलेश ने कुछ बिंदुओं को बताया, क्योंकि उसके दूर तक में हमको सोचना होगा, किसान रिस्क नहीं लेता, उसके दो खेती भले हो लेकिन वो तब करना चाहता है उस काम को जब वो आश्वस्त हो जाए। यदि मैंने अपने जो पारंपरिक खेती है ये जो चीजें उसमें उसको संतोष है, वो तब दूसरी जगह आता है जब वो रिस्क तब लेता है जो उसको भरोसा हो। हम कितना भरोसा दिला सकते हैं ये भी देखने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ ये प्रदेश जो जलवायु की दृष्टि से है, चाहे वो जैविकता की दृष्टि से, तमाम देश से काफी कुछ भिन्न है, और इसलिए इसमें तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं। यह अभियान लिया जा रहा है और त्रिवेदी जी ने काफी सब्जी उत्पादन में बेमौसमी सब्जी के बारे में, ऐसे सुगंध युक्त पुष्पों के बारे में, इसका तो सुगंध की जैसे अभी उन्होंने कहा जेरेनियम का, अपने ओम गोपाल जी का, अब एक समय था जेरेनियम के लिए काफी कुछ जो है लोगों ने, लोग खड़े भी हुए, लेकिन क्योंकि जब मार्केट ने देखा तो लोग उत्पादन भी कर रहे, मार्केट में भी बेचने के लिए जब उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए व्यापक तरीके से मार्केट भी आपको तैयार करनी पड़ेगी ताकि किसानों को उसे जोड़ सके। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ और मेरी शुभकामना है कि इस अभियान में हम बहुत आगे जाएं।